ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 7, अध्याय का नाम है शिवजी द्वारा विस्पान से ब्रह्मांड की रक्षा। श्लोक संख्या 10 मेरे पीछे बोलें। सुरा सुरेन्द्र भुज वीर वेपिता परे भ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रत दावर्तन मादि कच्छपो मेनेंग कंडो यनमा प्रमेयः सुरा सुरेन्द्र भुज वीर वेपिता परे भ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रंत दावर्तन मादिक छपो मेनेंग कंडो यनमा प्रमेयः। शब्दार्थ बोलिए। सुर असुर इंद्र है देवताओं तथा असुरों के नायकों द्वारा भुजवीर्य अपनी भुजाओं के बल पर वेपितम गति करते हुए परिभ्रमंतम घूमता हुआ गिरिम पर्वत को अंग ही महाराज परीक्षित पृष्ठतः अपनी पीठ पर बिभ्रत स्थित तत् उस आवर्तनम घूमते हुए आदि कच्छप आदि कछुए की तरह मैंने विचार किया अंग कंडोयनम शरीर को खुजलाने के समान सुहावना अप्रमेय असीमित। अनुवाद मेरे पीछे बोली। हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा घुमा दिया तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। इससे उन्हें अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। तो श्लोक के शब्दों को समझेंगे, तात्पर्य से पहले श्लोक के शब्दों को समझेंगे। श्लोक के शब्द क्या हैं? सुरा असुर इंद्र, इसमें जो है कई शब्द इकट्ठे जुड़े हुए हैं। पहला शब्द है सुर और दूसरा शब्द है असुर, तीसरा शब्द है इंद्र, है ना। तो इंद्र का मतलब है इंद्रों के द्वारा, ये बहुवचन है इंद्रों के द्वारा, सुर असुर इंद्रों के द्वारा, यानी सुर इंद्र और असुर इंद्र। तो इंद्र का एक अर्थ तो होता है देवताओं के इंद्र, वो तो एक ही है, लेकिन वैसे इंद्र का अर्थ होता है मुख्य या नायक, है ना। जैसे राजा को बोलते हैं राजेंद्र, राजाओं के इंद्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंद्र शब्द का प्रयोग जो है नरेंद्र, राजा को बोलते हैं नरेंद्र, है मनुष्यों के इंद्र। तो इंद्र का अर्थ सामान्य अर्थ जो है ये भी है कि जो नायक है, जो मुख्य है, तो वो इंद्र कहलाता है। तो यहां पर इंद्र का अर्थ एक देवताओं के इंद्र नहीं है बल्कि अनेक हैं। सुर इंद्र और असुर इंद्र है, बहुवचन है। तो सुर इंद्र का मतलब देवताओं के इंद्रों के द्वारा, तो बहुत से देवताओं के इंद्र हैं, मतलब बहुत से ऐसे देवता हैं जिनके अधीनस्थ कई देवता हैं तो वो भी सुरेंद्र कहलाते हैं, तो बहुत से हैं सुरेंद्र, और असुरेंद्र भी बहुत से हैं, ऐसे असुर भी बहुत से हैं जिनके अधीन बहुत से असुरेंद्र, तो बहुत से हैं जो सुरेंद्र और बहुत से हैं असुरेंद्र। सुरा सुरेंद्र भुज वीर्य देवितम, तो उनके भुजाओं के वीर्य, वीर्य का मतलब होता है वीरता, भुजाओं की वीरता से है? तो देवताओं के बहुत से इंद्र हैं और असुरों के बहुत से इंद्र हैं, उनकी भुजाओं की वीरता से वेपितम, वेपितम का मतलब कंपायमान, कंपित हो रहा है। तो एक तरफ जो है देवताओं के इंद्र हैं बहुत से और एक तरफ असुरों के इंद्र हैं, और मथानी क्या है, मंदर पर्वत मथानी है, और रस्सी क्या है, वासुकी सर्प की रस्सी है ना। तो भुज वीर देवितम, उनके भुजाओं के बल से वो कंपित हो रहा है, और परिभ्रमंतम, और परिभ्रमण कर रहा है, तो ऐसे नहीं कर रहा है भ्रमण, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, परिभ्रमंतम, तो पूरा चक्कर ऐसे एक बार लगा लेता है, फिर दूसरा चक्कर ऐसे लगा लेता है, तो इस तरह से पूरा चक्कर हो जाता है, एक फिर दूसरा चक्कर, यहाँ इस तरह से जो है वो चल रहा है। मथानी ऐसी होती ना, मथानी ऐसी होती है ना, तो जितना इधर घूमती है फिर उतना उधर घूमती है, उल्टा भी घूमती है ना, इस तरह से जो है जो पर्वत है परिभ्रमंतम। गिरिम, गिरिम मतलब पर्वत, तो घूमता हुआ पर्वत। अंग पृष्ठतः, अंग शब्द है परीक्षित महाराज के लिए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यहाँ अंग कह रहे हैं, अंग का अर्थ बहुत प्रिय है, जैसे अपना ही शरीर, अपना शरीर आपको कितना प्रिय है, आपकी कितनी देखभाल करते हैं शरीर की है ना, तो इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अंग बोल रहे हैं। किसी को भी अंग अगर बोला जाता है तो वो अपने शरीर की तरह क्या होता है, प्रिय होता है, तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अंग कह रहे हैं। अंग पृष्ठतः बिभ्रत, पृष्ठतः माने पीठ के द्वारा बिभ्रत धारण किए हुए, तो सुर इंद्र और असुर इंद्रों के भुजाओं के पराक्रम से कंपायमान और भ्रमण करते हुए पर्वत को पीठ के द्वारा धारण करते हुए बिभ्रत, तदा आवर्तनम, तद आवर्तनम, तद आवर्तनम धारण करते हुए उस आवर्तनम को, उस आवर्तन को यानी पर्वत के घूमने को, उस आवर्तन को आदि कच्छपो, जो आदि कच्छप थे भगवान, आदि कच्छप भगवान ने मैंने इन्हें माना, मैंने का मतलब है माना, उन्होंने पर्वत का जो इस प्रकार से घूमना है पीठ में धारण करके, और पर्वत घूम रहा है तो पीठ में उनको रगड़ हो रही है, पीठ में रगड़ हो रही है, तो आप सोचें बहुत कष्ट हो रहा होगा, ओ कितना कष्ट हो रहा होगा भगवान को कि पर्वत रगड़ रहा है, एक तो भार पर्वत का पीठ में और दूसरा पर्वत की रगड़, ओ हो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो यहाँ कहा मैंने अंग कंडोयनम, यहाँ दूसरा अंग शब्द आया है अंग कंडोयनम, अंग कंडोयनम माने शरीर की खुजलाहट, शरीर की खुजलाहट को दूर करना, अंग कंडोयनम अप्रमेय, तो वो भगवान अप्रमेय है, उनको आप जो है समझ नहीं सकते अपनी कल्पना के द्वारा, तो ये भगवान ऐसे हैं, तो वो आदि कच्छप हैं भगवान, किसी कछुए से तुलना नहीं की जा सकती है, किसी कछुए से भगवान की तुलना नहीं की जा सकती है। कछुए की पीठ में अगर आप रख देंगे भार तो उसकी पीठ ही टूट जाएगी, कछुआ ही मर जाएगा है ना, इतना बड़ा भार रखें और फिर उसको घुमाने के तो बाद बहुत दूर है ना, मर जाएगा है? लेकिन ये भगवान जो है उस पर्वत का जो भ्रमण था, घूमना था, उसको उन्होंने क्या माना कि इसे कोई खुजलाए तो बड़ा अच्छा लगता है, इस प्रकार से उनको जो है लगा। कहीं पर और भी ये भी बताया गया है कि जब खुजलाहट उनकी दूर हो रही थी तो उनको नींद आ गई, नींद आ गई, तो नींद आ गई तो उनकी श्वास तेजी से चलने लगी, नींद में क्या होता है, श्वास तेजी से चलती ना, तो नींद में श्वास तेजी से चलने लगी, तो तो वही श्वास जो तेजी से चलने लगी उसी से ही ज्वार भट अभी तक आ रहा है समुद्र में। समुद्र में ज्वार आता है, पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, अमावस्या के दिन भाटा आता है, पानी नीचे जाता है। तो ज्वार भाटा 15 दिन में पानी ऊपर उठता है और 15 दिन में पानी नीचे जाता है। तो ज्वार भाटा उनकी श्वास का अभी तक जो वेग है वो पानी में बना हुआ है। जब गहरी नींद आती है तो सांस भी गहरी हो जाती है ना, सांस भी गहरी हो जाती पंद्रह दिन तक श्वास लेते हैं तो पानी नीचे जाता है, और 15 दिन तक श्वास बाहर निकलती है तो पानी ऊपर उठता है। तो बस उनके श्वास का वेग अभी तक जो है चल रहा है पानी के अंदर। और ये जो खारे पानी का समुद्र है इसमें वो समाधि नहीं पाते, क्योंकि वो कछुआ जो है 1,00,000 योजन का विस्तार है उस कछुए का। 1,00,000 योजन का मतलब है 12,00,000 किलोमीटर का डायमीटर। डायमीटर समझते व्यास, वृत्ताकार पीठ है तो उसका जो व्यास है वो 12,00,000 किलोमीटर का है। तो ये बताया गया है कि जम्बू द्वीप के चारों तरफ जो खारे पानी का समुद्र है उसकी भी चौड़ाई 12,00,000 किलोमीटर है। तो उसमें 12,00,000 किलोमीटर के कछुआ भगवान तो आ ही नहीं पाएंगे। पीठ इतनी बड़ी है फिर उनके हाथ पैर और फैलेंगे तो कहाँ आए, उस समुद्र में तो आ नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जो क्षीर समुद्र है जिसका मंथन किया गया था वो 16,12,000 × 16 यानी 16,00,000 योजन, उसमें 12 से गुणा करें इतना, तो 1,00,000 योजन की जो है पीठ है उनकी। तो 16,00,000 योजन में आसानी से उनका जो है मतलब स्थान मिल गया उनको। तो इस तरह से यहाँ क्या क्या निकाला, 16×12 192,000। तो 16×12 फिर उसका लाख करेंगे ना, तो 192 हुआ उसमें लाख, तो 1,92,00,000 हुआ ना, 1,92,00,000 किलोमीटर की। अच्छा उसके बाद 12, 1,92,12,000। हाँ 1,92,00,000 किलोमीटर की वो जो है क्षीर समुद्र इतना बड़ा है। तो उसमें जो है 12,00,000 किलोमीटर की जो उनकी पीठ है वो आसानी से मतलब आ सकती थी और वो सो सकते थे उसमें। तो यहाँ पर ये बताया मेनेंग कंडुयनम अप्रमेयः, और अंग कंडुयनम का मतलब है खुजली उनकी जैसे दूर हो रही है तो बड़ा सुख मिल रहा है। लेकिन भगवान को ऐसे नहीं समझना है कि अगर कोई खुजाए नहीं तो फिर खुजली परेशान करती है। किसी को खुजली की बीमारी होती है और अगर वो ना खुजाए तो फिर खुजली बड़ी परेशान करती है, और पीठ में तो कछुआ खुजा नहीं सकता तो फिर कोई होना चाहिए जो पीठ में खुजाए। तो भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर सच्चित आनंद विग्रह, आनंद विग्रह आनंद मात्र है, उसमें आनंद ही आनंद है, दुख कुछ है ही नहीं। तो हम कल्पना नहीं कर सकते भगवान के शरीर की, हमारे शरीर में यही है। खुजली से अगर आनंद आ रहा है और खुजली अगर ना हो तो फिर कष्ट होगा, और खुजली करते हैं तो फिर कष्ट होता है, दोनों तरह से कष्ट है। खुजली होती है तो अगर नहीं खुजाते हैं तो भी कष्ट होता है, और खुजलाते हैं तो भी कष्ट होता है। तो ये शरीर तो हमारा निरानंद है, हमारा शरीर निरानंद है, ये भगवान का शरीर आनंद विग्रह है, सच्चित आनंद विग्रह है, आनंद विग्रह है। तो उसमें सब प्रकार के आनंद ही आनंद है, लेकिन दुख किसी प्रकार का नहीं है। खैर खुजलाहट उनको हो रही हो तो ऐसा नहीं है कि खुजलाहट हो रही हो और खुजलाहट का जो है कष्ट हो रहा हो, लेकिन जब पर्वत घूम रहा है तो वो जो है खुजली जो होती है किसी को, और जब खुजाएं तो जो सुख मिलता है वो सुख उनको मिल रहा है, लेकिन खुजलाहट के बाद जो दुख मिलता है वो उनको नहीं है, और खुजलाए बिना जो दुख मिलता है वो भी भगवान को दुख नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर में दुख है ही नहीं। और हमारे शरीर में दुखी दुख है, निरानंद विग्रह, असत अचित निरानंद हमारा शरीर है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल उल्टा है, सच्चित आनंद है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सदैव असीम है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भगवान सदैव असीम है। इस श्लोक में कोई ऐसा शब्द है जिस कारण से प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान सदैव असीम है? अप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमेय है ना। सुखदेव गोस्वामी उनको अप्रमेय कहते हैं। अप्रमेय का मतलब क्या है कि जिनको आप नाप नहीं सकते, वो परिमित नहीं है, सीमित नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सदैव असीम है, हर चीज में असीम है, उनके बल की कोई सीमा नहीं है, उनके भार उठाने की भी कोई सीमा नहीं कि कितनी शक्ति कितना भार उठा रहे हैं। और पर्वत इतना बड़ा पर्वत है तो उसका भार भगवान उठा रहे हैं। पर्वत बताया गया है, ये जो मंदर पर्वत है ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है। सुमेरु पर्वत है, जम्बू द्वीप के बिल्कुल ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है जो कि 84,000 योजन ऊंचा है। एक योजन में 12 किलोमीटर है, ये समझ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऊपर है, कितना ऊंचा है सुमेरु पर्वत। 84,000 योजन ऊंचा है, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर निकलेंगे, इतना किलोमीटर ऊंचा है सुमेरु पर्वत। और उसके चारों दिशाओं में 4 पर्वत हैं। पूर्व दिशा में मंदर पर्वत जो अभी यहाँ क्षीर समुद्र में लाया गया, पूर्व दिशा में मंदर पर्वत है और दक्षिण दिशा में मेरु मंदर पर्वत है, फिर पश्चिम दिशा में सुपार्श्व पर्वत है और उत्तर दिशा में कुमुद पर्वत है। और ये सभी पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं, 10,000 योजन ऊंचाई के हैं। सुमेरु पर्वत तो बहुत ऊंचा है, 84,000 योजन ऊंचा है, लेकिन चारों दिशाओं में ये जो 4 पर्वत हैं ये प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन ऊंचाई के हैं। 10,000 में 12 से गुणा करिए, 1,20,00,000। क्यों 1,20,00,000 किलोमीटर ऊंचा है? अच्छा हाँ क्षमा कर, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा ये पर्वत है जो कछुए की पीठ में रखा हुआ। आप सोचिए, और इतने ही चौड़े भी हैं ये चारों पर्वत जो है, इतने ही चौड़े हैं, यानी 1,20,000 किलोमीटर चौड़े भी हैं। अब लंबाई कितनी होगी ये नहीं बताएंगे, ये लंबाई निकाली जा सकती है। सुमेरु पर्वत के जो व्यास है ये 32,000 योजन का व्यास है, तो चारों तरफ कितना मतलब रेखा बनेगी उसके तो निकाला जा सकता है कितनी लंबाई है। तो इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा है पर्वत। और ये 4 पर्वत हैं, इन चारों पर्वत के ऊपर एक एक पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हैं, ये विशेष वृक्ष हैं। मंदर पर्वत के ऊपर एक आम का वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 100 योजन है। आम का वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 100 योजन की है, 100 योजन का मतलब 12 से गुणा करेंगे 1200 किलोमीटर ऊंचा आम का वृक्ष है। अब हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, हर कोई नहीं देख सकता, हर कोई नहीं पहुंच सकता। अर्जुन पहुंचे थे सुमेरु पर्वत, उन्होंने दर्शन दे किया था। तो इसी पृथ्वी में ये सब आश्चर्य हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, हर व्यक्ति को नहीं दिखाई देते। और जो पुण्यात्मा लोग हैं वहां निवास करते हैं इन पर्वतों में, और सुमेरु पर्वत में पुण्यात्मा लोग निवास करते हैं। तो आम का वृक्ष है 1200 किलोमीटर कितना नहीं 100 योजन, हाँ 1200 किलोमीटर ऊंचा है, और इतनी बड़ी उसकी त्रिज्या भी, विस्तार भी इतनी बड़ा है 1200 किलोमीटर से जो है, मतलब दूना करते हैं तो व्यास हो जाएगा, इतना बड़ा व्यास है। है, 2400 किलोमीटर का व्यास है, मतलब घेरा समझो, मैं परिधि नहीं की बता रहा हूँ, व्यास डायमीटर है ना, इतना बड़ा जो है डायमीटर है। इस आम के वृक्ष से आम के फल जब गिरते हैं तो फट जाते हैं। अब आम के फल कितने बड़े होंगे वो आप सोच लीजिए। हाथी कम से कम हाथी के बराबर तो होंगे ही, उससे भी बड़े होंगे है ना, कम से कम हाथी के बराबर तो होंगे। और जब उतनी ऊंचाई से गिरते हैं तो फट जाते हैं, और उसमें जो रस, आम का जो रस है वो निकलता है। तो अरुणोदा नाम की एक नदी है जो इलावृत वर्ष में बहती है, वो इलावृत वर्ष है, वो हम सब स्थान नहीं देख पाते हैं देखने से इस पृथ्वी में। अरुणोदा नाम की नदी इलावृत वर्ष में बहती है, और जो पार्वती देवी, शिव जी भी इलावृत वर्ष में निवास करते हैं, तो उनकी जो पत्नी पार्वती देवी हैं, उनकी जो दासियां हैं, यक्षों की पत्नियां हैं, वो पार्वती की दासियां हैं, यक्षों की पत्नियां उनका जल पीती हैं, तो शरीर सुगंधित हो जाता है, यक्षिणियों का शरीर सुगंधित हो जाता है, और उनके शरीर से 10 योजन तक सुगंध फैलती है। 10 योजन का मतलब 12 से गुणा करें, 120 किलोमीटर तक, शरीर से 120 किलोमीटर तक सुगंध फैलती है। यहां से वृंदावन है होटल 120 किलोमीटर, चारों तरफ जहां पर भी वो हैं स्त्रियां, चारों तरफ 120 किलोमीटर तक सुगंध फैलती है ना। ये जो है मंदर पर्वत है, उस पर्वत को वहां से लेकर के आए तो देवता और असुर उठा करके लाए तो उठा नहीं पाए, उठा करके ला रहे थे तो बीच में दब गए, तो फिर भगवान ने जो है उसको अपने एक हाथ से उठा करके गरुड़ के ऊपर रखा और लेके आए क्षीर समुद्र में रखा है। गरुड़ जी का आकार कितना है कोई अंतर नहीं पड़ता, छोटा आकार भी है तो भी बड़ा काम कर सकते हैं। भगवान का भी आकार छोटा है, जैसे कृष्ण का आकार कितना छोटा है, गोवर्धन पर्वत कितना बड़ा, अभी तो बहुत छोटा है क्योंकि वो कम हो रहा है, कितना बड़ा था गोवर्धन पर्वत है ना, तो भगवान के लिए और भगवान के वाहन गरुड़ जी के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। और वो अपना आकार बड़ा भी कर सकते हैं ना? वो इनको काम रूप बोलते हैं, काम रूप में इच्छा अनुसार अपना शरीर धारण कर लेते हैं। गरुड़ जी कभी मनुष्य के शरीर में भी होते हैं, जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं। तो ये मंदर पर्वत का जो है वर्णन है, और फिर मंदर पर्वत को गरुड़ में, गरुड़ की पीठ में रख करके जब भगवान लाए क्षीर समुद्र में और क्षीर समुद्र ने स्थापित किया, तो क्या हुआ कि वासुकी सर्प की जो है रस्सी बना करके जब वो मंथन करने लगे तो वो पर्वत नीचे जाने लगा, पानी में भी नीचे जाने लगा। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण करके नीचे से ही ऊपर उठाया, तो जहां वो जा रहा था उसके नीचे ही भगवान कछुआ का रूप धारण करके अपने पीठ में उन्होंने उठा लिया, इतना भार है ना। तो भागवत के 5वें स्कंद में ये वर्णन आता है मंदर पर्वत का। तो ये जो है पूर्व दिशा में, ये जो है अरुणोदा नदी आम के रस की जो नदी है वो बहती है, और यहाँ पर एक सरोवर भी, इस मंदर पर्वत में एक सरोवर भी है जो दूध, जिसमें दूध भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, दूध का सरोवर है। इसके बाद दक्षिण दिशा में मेरु मंदर पर्वत है, ये भी इतनी ऊंचा है, 10,000 योजन ऊंचा है और इतना ही चौड़ा है, और इसमें जामुन का एक पेड़ है जिसको कि जम्बूद्वीप, इस कारण से जम्बूद्वीप कहा जाता है। तो मेरु मंदर के ऊपर वो जामुन का पेड़ है, वो भी इतना ही ऊंचा है, कितना ऊंचा, 100 योजन ऊंचा जामुन का, और उससे जो है जामुन के फल गिरते हैं, हाथी के बराबर जामुन के फल गिरते हैं तो फट जाते हैं, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे फट जाते हैं। तो वो जो रस बनता है वो जम्बू नद कहलाता है, और जांबु नत स्वर्ण, और उसका जो रस है वो मिट्टी में जब मिल जाता है तो सोना बनता है। तो जांबु नत स्वर्ण, वहाँ जो देवता और जो है यक्ष हैं उनकी जो स्त्रियां हैं वो आभूषण बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं उस सोने के। वो जांबु नत स्वर्ण वो अलग ही एक सोना, एक प्रकार का सोना है। और पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में सुपार्श्व पर्वत है। सुपार्श्व पर्वत, हाँ सुपार्श्व पर्वत में जो है कदम्ब का एक वृक्ष है, वो भी इतना ऊंचा है, और उसका जो रस है वो जो है पश्चिम दिशा में बहता है इलावृत वर्ष में। और उसमें एक सरोवर है, वो इच्छु रस का सरोवर है, इच्छु रस यानी गन्ने के रस का सरोवर है। और मेरु मंदिर है, इसमें शहद का एक सरोवर है। और उत्तर दिशा में कुमुद पर्वत है, इतना ही ऊंचा है कुमुद पर्वत, और इसके ऊपर एक बट का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, और उसमें जो सरोवर है वो मीठे जल का सरोवर है। तो इस प्रकार से सुमेरु पर्वत और ये जो चार पर्वत हैं चारों दिशाओं में, और इनसे जो निकलने वाली नदियां हैं, ये पुण्यात्मा लोग ही यहाँ जा सकते हैं और पुण्यात्मा लोग ही देख सकते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो कहेंगे होता ही नहीं, लेकिन आपके ऐसे कर्म नहीं है कि आप देख सकें। वो स्थान जो है सब भगवान के द्वारा निर्मित हैं। तो ये जो है अपनी शक्ति से, आप अपनी वैज्ञानिक शक्ति से इन स्थानों को देख नहीं सकते। पृथ्वी में बहुत से आश्चर्य हैं। तो ये सब जो है, जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, ये अकाट्य हैं, ये अपने आप में प्रमाण हैं। इनमें कुछ ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि नहीं हमें इसको जो है प्रमाणित करना है और हमें जब दिखाओगे तब हम मानेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती। भगवान की सृष्टि में कितने रहस्य हैं आप नहीं जान सकते उनको, और अपनी इंद्रियों की शक्ति से आप नहीं जान सकते, है ना। लेकिन सभी शास्त्रों में वर्णन है, एक शास्त्र में नहीं है। आजकल के जो वैज्ञानिक है, जो निष्कर्ष होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। अभी उन्होंने कोई दवाई निकाली, भाई ये दवाई इस बीमारी को ठीक कर रही, फिर बाद में पता चलता है ये दूसरी बीमारी पैदा कर रही। तो उनके ही निष्कर्ष जो है अपने आप में बदलते रहते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में निष्कर्ष कहीं नहीं बदलते। हर शास्त्र में ये बात आती है। तो ये सब जो निष्कर्ष हैं ये हमें स्वीकार करने चाहिए। भगवान की सृष्टि में ये सब आश्चर्य हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद्यपि कच्छप रूप में भगवान ने अपने पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की चिंता को समझ गए कि भक्त को जो है भगवान के कष्ट की चिंता होती है। तो भक्त जो है प्रेम के कारण भगवान की जो है कष्ट की चिंता करता है, तो ये स्वाभाविक है, प्रेम में ऐसा होता है ना। लेकिन फिर जो दूसरे भक्त हैं वो इस चिंता को दूर करते हैं भगवान की महिमा का वर्णन करके। तो सुखदेव गोस्वामी क्या करें, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी, विपरीत इसके उन्हें थोड़ी खुशलाहट लग रही थी, जैसे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो आठवां स्कंध है इसमें परीक्षित महाराज ने कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी 14 मन्वंतर के अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान के जो है मन्वंतर अवतार अलग होते हैं, लीला अवतार अलग होते हैं, गुणावतार अलग हैं, छह प्रकार के अवतार हैं, है ना। तो जो मन्वंतर अवतार हैं तो ये पूरे मन्वंतर तक ये जो है रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो 125 साल तक रहा, है ना, लेकिन जो मन्वंतर अवतार है वो पूरे मन्वंतर तक रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रत्येक मन्वंतर के एक एक अवतार का वर्णन किया, ठीक है। तो ये छठवें मन्वंतर का अवतार है कूर्म अवतार। ये पांचवें अध्याय का 10वां श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 10वें श्लोक के पहले कहते हैं कि छठवां जो मनमंत्र है, चाक्षुष नाम के मनु थे, इसलिए चाक्षुष मनमंत्र भी कहलाता है, है? और इसमें भगवान ने जो है अजित नाम धारण किया था, देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वैराज उनके पिता थे और उनके पुत्र हुए अजित भगवान, तो उन्होंने ही कूर्म रूप धारण करके पयोधम ये निर्मत है क्षीर सागर का मंथन करके सुराणाम साधिता सुरा, देवताओं के लिए अमृत साधित किया, यानी निकाला, अमृत निकाला और भ्रममाणो अम्भसिद्रता कूर्म रूपेण मंदरहा, भ्रममाणो अम्भसिद्रता, तो जो महान पर्वत मंदर है तो वो भ्रमण कर रहा अपनी पीठ पर, और वे जो है इस प्रकार से कूर्म रूप उन्होंने धारण किया। तो ये जो कच्छप अवतार या अजित अवतार, भगवान का जो अजित अवतार है, तो ये छठवें मनवंतर का अवतार है। और इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है, हाँ? कितने नंबर का मनवंतर है? सातवां, सातवां मनवंतर चल रहा है, हम लोग सातवें मनवंतर में है ना। तो ये जनरल नॉलेज है जो आजकल नहीं दी जाती, सामान्य ज्ञान यही है हम लोग किस मनवंतर में, हम लोग सातवें मनवंतर में। सातवें मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर में 71 बार चारों युग बीतते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों युग 71 बार बीतते हैं, और चारों युग मिलाकर के 43,20,000 साल बनता है। इस प्रकार से 71 बार चारों युग बीतते हैं तो लगभग 30 करोड़ साल होता है, तो एक मनमंत्र 30 करोड़ साल का लगभग होता है, तो सातवां मनमंत्र चल रहा है। सातवें मनमंत्र के जो अवतार हैं वो वामन देव हैं, जो पूरे मनमंत्र तक रहते हैं, अभी भी हैं, बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में हैं। तो मनमंत्र अवतार एक अलग ही अवतार है, प्रत्येक मनमंत्र में मनु बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं और सप्तऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं, इंद्र और मनु और सप्तऋषि और देवता। तो इसमें बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि प्रत्येक, मतलब पहले मनमंत्र के इंद्र कौन थे, सप्तऋषि कौन थे, देवता कौन थे, मनु कौन थे, दूसरे मनमंत्र ये सातवां मनमंत्र है, सातवें मनमंत्र के मनु कौन है, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनमंत्र कहलाता है, उन्हीं मनु के नाम से ही मनमंत्र कहलाता है, वैवस्वत मनमंत्र है। इस मनमंत्र के इंद्र कौन है, पुरंदर, पुरंदर नाम के इंद्र है, इंद्र बदलते हैं प्रत्येक मनमंत्र में, है ना। तो इस तरह से ये वर्णन हो रहा है कि भगवान ने कूर्म रूप धारण किया। तो इतना जब परसी महाराज ने सुना तो सुखदेव गोस्वामी से फिर उन्होंने विस्तार में कथा पूछी, तो विस्तार में कथा पूछी तो पांचवें अध्याय में ये बात आई थी, तो विस्तार से जब पूछा तो उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अस्त्रों के आक्रमण से देवता लोग जब बहुत पराजित हो गए तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान क्षीर समुद्र के तट पर देवता लोग प्रार्थना करते हैं, तो पांचवा अध्याय पूरा उसमें देवताओं की प्रार्थना में चला जाता है। तो छठवें अध्याय में भगवान दर्शन देते हैं तो ब्रह्मा जी जो है स्तुति करते हैं, तो छठवां अध्याय जो है पूरा उसमें चला जाता है कि ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और भगवान फिर देवताओं को आदेश देते हैं कि तुम लोग अस्त्रों के साथ में संधि करो, और लेकिन संधि जो है मित्रता केवल अपने स्वार्थ के लिए है, स्वार्थ पूरा हो जाए तो फिर मित्रता नहीं है तुम्हारी उनके साथ में, शत्रुता ही है, है ना। अब वो अमृत निकलेगा, अमृत तुम लोगों को ही मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, भगवान ने सब कुछ ये सब बातें बताई। तो ये जो है अमृत निकालने के लिए ये सब जो है कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास समय नहीं है क्योंकि कुछ विशेष सूचनाएं मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। तो यहीं पर हम विश्राम करते हैं। हाँ, एक कविता है इस श्लोक के विषय में, हिंदी में पद्यानुवाद लिखा है विष्णुप्रिय देवी ने। हे राजन, जब बड़े बड़े असुरों ने और देवों ने अपने महाबाहुबल से बंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पे घूमने ही लगा। आदि कच्छप अनंत प्रभु को था वो ऐसा भास रहा, मानो उनकी पीठ को कोई हो फुसला रहा। इस कारण पर्वत का आवर्त उनको था अति भा रहा। हरिओम। तो अब आप लोगों